जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19 पर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में 23 अक्टूबर 2005 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का एक श्लोक हम पढ़ेंगे। इस श्लोक के द्वारा भगवान की दामोदर लीला का वर्णन है, और क्योंकि दामोदर अष्टका का महीना है और हम रोज दाम कार्तिक का महीना रोज दामोदर अष्टका गाते हैं, तो मैंने सोचा कि हमें इस लीला को के विषय में सुनना चाहिए और इस लीला पर विचार करना चाहिए। एवं सदाशिवयंगाभृत्यवश्यता स्वावशिनापि कृष्णेन यस्येदं शेष्वनं पश्येत्। ॐ ज्ञानं तिमिरं दास्य ज्ञानञ्जनाशलक्य चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सावधानेन भूतले स्वयं रूपा कदामय ददाति स्वापदिगं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सर्वदं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतम् प्रयजना साहित्यम कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पदान सहगना दलिता श्री शाखानत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते दत्ता कंचन घोरांगी राधे कृपा सिंधु पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति हरे कृष्ण हरे एवं संदर्शित यंग हरिना भृत्या वश्यता स्वावशिना भी कृष्णेन यसिदं शेश्वरं पश्ये। हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव भगवान ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उचित देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। तो परसों से हम भक्तों ने दामोदर अष्टकम का प्रार्थना का उच्चारण आरंभ किया है और हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि अगर हम दामन अष्ट का प्रार्थना का उच्चारण करें रोज, तो इसके द्वारा भगवान दामोदर के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ेगा और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा कि भगवान शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र ये महान ऊंचे देवता 33 करोड़ देवता हैं, पर ब्रह्मा, शिव और इंद्र को ऊंचे देवता माना जाता है। तो जो ऊंचे देवता हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान के वश में हैं। श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ते हो किस प्रकार ये ऊंचे देवता भी भगवान के वश में हैं। या शिव जी के विषय में आप पढ़ते हो किस प्रकार एक समय शिव जी ने एक राक्षस विकासुरा को वर दिया था, जो ये था कि जहाँ भी वह हाथ रखे उसके नीचे जो भी है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे ही विकासुरा को ये वर प्राप्त हुआ, उसने अपना हाथ फैलाया कहाँ, भगवान शिव के सिर पर रखने के लिए, और अंत में शिव जी को दौड़ना पड़ा और जहां भी वो दौड़े उनके पीछे विकासुरा था। फिर अंत में वो श्वेता द्वीप में पहुंचे, यहाँ के भगवान ने अपना एक ब्रह्मचारी का रूप ग्रहण कर लिया था। और फिर जब विकासुरा उनके पीछे भागा, भगवान ने पूछा, अरे भाई तुम किसका पीछा कर रहे हो? शिव जी का। क्यों? उन्होंने मुझे वर दिया है, मैं उस वर का उपयोग करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं कि जब से शिव जी का अनबन हुआ था उनके ससुर के साथ लड़ाई हुई है, जब से उनके वर में ताकत नहीं, तो पहले ये तो देखो कि ये वर झूठा था, और अगर यकीन से झूठा था फिर तुम्हें मारने का अधिकार है, नहीं तो पाप कमाओगे। तो विकासुरा ने सोचा ये तो अच्छी सलाह दे रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने हाथ को अपने सिर पर रखा, क्या परिणाम हुआ, सिर जो बिल्कुल फट गया। तो और शिव जी ने भी जब प्रचेतस की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मंत्र दिया था उच्चारण का, किसका मंत्र दिया था, भगवान कृष्ण के गुणगान का। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वालों को, बछड़ों को चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था, जैसे आजकल लोग किडनैप करते हैं, तो किडनैप कर लिया था। और जैसे डॉक्टर लोग आपको ऑपरेशन से पहले क्लोरोफॉर्म देते हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपना क्लोरोफॉर्म देकर इन बछड़ों को, ग्वालों को गहरी नींद में डाल दिया था। क्लोरोफॉर्म तो देते हैं 4-5 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, पर ब्रह्मा जी का क्लोरोफॉर्म तो बहुत लंबा था, पूरा साल वो सोते रहे। और फिर भगवान ने अपना विस्तार किया, भगवान को तो समझ गए थे कि ब्रह्मा की लीला है। और फिर ब्रह्मा जी ने अंत में क्या देखा कि भगवान ने विस्तार कर लिया था, तो वो सोचे कि जिनको उन्होंने सुलाया था वो जाग गए होंगे शायद। तो ब्रह्मा जी जब देखने गए कि वो सो रहे हैं या नहीं, उन्होंने उन्हें छुपा दिया था पहाड़ों के पीछे, तो देखा कि वो बछड़े वहीं सो रहे हैं और ग्वाले भी। तो ब्रह्मा जी भी समझ पाए क्या कि भगवान की अद्भुत लीला है, और उनके शरणागत हो गए, उनसे माफी मांगी इस अपराधी कार्य के लिए। और फिर इंद्र जी, यहाँ ऊंचे देवता में इंद्र का नाम भी गिना गया है, इंद्र जी भी क्रोधित हो गए थे जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों के द्वारा भगवान ने इंद्र यज्ञ रुकवा दिया है, थोड़े ही हफ्तों में आप गोवर्धन पूजा मनाओगे। तो इंद्र जब क्रोधित हो गए, उन्होंने क्या किया, अपने क्रोध को प्रकट किया इस विचार के साथ। उनका विचार क्या था, ब्रजवासियों को सबक सिखाया जाए, और तेजी के साथ वर्षा बरसने लगी। पानी का जो बूंद था एक पहाड़ एक खंबे जितना भारी था। और भगवान ने ब्रजवासियों की सुरक्षा कैसे की? कैसे? गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के बाएं हाथ के नाखून के बल पर। और अंत में इंद्र समझ पाए कि वो ब्रजवासियों को नुकसान नहीं दे पाएंगे। तो यहां शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शिव ब्रह्मा तथा इंद्र ये ऊंचे देवता ये संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान के वश में है। जब ये ऊंचे ऊंचे देवता भी भगवान के वश में हैं, तो भगवान किसके वश में आ जाते हैं? हाँ, क्या कहते हैं शुक्रदेव गोस्वामी? फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण, भगवान के तो अनेक गुण हैं, भगवान के अनेक गुणों का आप वर्णन भी नहीं कर सकते। अनंत से हजारों जीवों के साथ भी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, पर संतों ने उनके अनेक प्रसिद्ध गुणों का वर्णन किया है। तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अनेक गुणों में एक गुण यह है कि वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। और आगे ये कहते हैं कि यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। तो जब शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं इस लीला, तो इस लीला से उनका अर्थ क्या है? ये दामोदर लीला, क्योंकि इस भागवतम के 10 स्कंद के 9वें अध्याय में शुक्रदेव गोस्वामी जी भगवान की दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। और रोज शाम को हम दामोदर अष्टक का गाते हैं। तो ये दामोदर लीला का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी जी ने किया है भागवतम में, और भगवान की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। और इन अद्भुत लीलाओं के द्वारा क्या स्थापित होता है कि वही हैं परम भगवान। भगवान कहते हैं गीता में जन्म कर्म चा में दिव्य। भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति या देवता कर पाया है या कर पाएगा। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है एकला ईश्वर कृष्णा आर सब हृदया, एक ही है परमेश्वर ईश्वर, बाकी सब जो हैं उनके सेवक हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में क्या कहा है ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकर्ण कर्ण। तो यशोदा माता दूसरी दासियों के साथ घरेलू काम में जुड़ी हुई थी, और वो क्या कर रही थी? हाँ, दही, दही का मंथन कर रही थी। यशोदा माता के घर में हर कार्य जो किया जा रहा था एक ही चार के साथ, वो ये था कृष्ण की सेवा। और वो कर रही थी, हाँ, दही को मथने लगी, और दही को मथने के साथ साथ अपने जीभ से भगवान की लीलाओं का गीत का वर्णन कर रही थी। यशोदा माता ने देखा भगवान की अद्भुत लीला, कैसे पुतना आई थी मारने के लिए खूबसूरत औरत का रूप ग्रहण करके, और कैसे उसने भगवान को अपनी गोद में लिया, स्तन द्वारा दूध पिलाने गई, और स्तन में क्या था? जहर, और पुतना का ही वध हो गया। फिर उन्होंने देखा कि एक समय जब यशोदा माता रसोई कर रही थी और अपने बेटे को पास में बिठाया हुआ था, तो इतनी तेजी से आंधी आई, धूल कौर की यशोदा माता देख भी नहीं सकी कि उनका बेटा कहाँ है। हालांकि उन्होंने बेटे को पड़ोस में ही रखा था, और ये थी किसकी शरारत? ढिना पड़ता थी। और तिना पड़ता ने उसे भी कंस नहीं भेजा था। तिनावर्त ने बच्चे को उठाकर वर्मेन का रूप धारण करके ऊपर 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 उठाते गए। इस भावना के साथ ऊपर उठा उठा कर ऊपर से फेंके गए और फिर भगवान ने अपना बोझ वजन इतना बढ़ाया कि तिनावर्त उन्हें उठा ही नहीं सका। तो यशोदा माता ने ये लीला देख ली थी किस वक्त एक कार्ड भरा हुआ था सामान के साथ। भगवान ने उसे हाथ ही लगाया अपने पांव से तो एकदम नीचे आ गया। तो जब यशोदा माता ने पूछा इसको ये नीचे कैसे आ गया, ये तो इतना भरा हुआ था, भारी था। दूसरे वालों ने कहा ये तो आपके बेटे ने अपने पांव से धक्का मारा। उन्होंने कहा मेरे छोटे बेटे में के पांव में इतनी ताकत कहां से आ सकती है। तो यशोदा माता ने इन घटनाओं द्वारा वो समझने लग गई थी कि ये जो मेरा बेटा है या तो शायद कोई देवता है या इस पर नारायण की असीम कृपा है। तो एक तरह से तो वो दही मतने लगी और साथ में अपने जीव के द्वारा उन्होंने उस गीत का उच्चारण कर रही थी, वो गीत जिसमें उन्होंने भगवान की अनेक बाल लीलाओं का वर्णन किया था। तो एक तरह से वो सेवा कर रही थी, दही को तैयार कर रही थी, दूध दही मक्खन, साथ में जीभ से भगवान का लीलाओं का वर्णन कर रही थी। हम चैतन्य चतुर्वेदी में कथा पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। अनेक भक्त जुड़े हुए थे, एक दो नहीं, और बाल्टियों में पानी आ रहा था, झाड़ू से सब सफाई कर रहे थे, रगड़ रहे थे मिट्टी निकालने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी खुद हर स्थान में जाकर देख रहे थे कि वो मिट्टी ठीक निकाल रहे हैं कि नहीं, पर साथ में सबके सब जीव द्वारा क्या कर रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। तो यहां आप क्या देखते हैं इस अध्याय में कि यशोदा माता अपनी सेवा कर रही थी पर साथ में भगवान की लीलाओं का वर्णन भी कर रही थी अपनी जीव के साथ। और क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी इस प्रकार लीलाओं का स्मरण भी कर रही थी, और क्योंकि भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी वो अत्यंत आनंद भी अनुभव कर रही थी। उसी प्रकार अगर हम सब भी ये प्रयास करें कि हमारी सेवा के साथ हमें भगवान की लीलाओं के विषय में गीत बनाने की आवश्यकता नहीं। यशोदा माता ने तो इन्होंने तो एक गीत लिखा था भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, वो उस गीत का उच्चारण कर रही थी। तो हमें गीत लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें एक महामंत्र दिया गया है जो उसको हम बड़ी सरलता से उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो सेवा करते हुए हमें भी साथ में जीव के द्वारा, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथियों के साथ कर रहे थे, जीव के द्वारा निरंतर क्या करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। तो इसके द्वारा हमें क्या लाभ होगा, एक तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे क्योंकि गीता के अंत में भगवान का क्या है उपदेश, मनमान अभाव बद भक्त हो मर्यादि मांग नमस्कारो, मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। और अगर तुम ये सब चीज चार चीजों का पालन करोगे तो भगवान कहते हैं बिना शंख के कहाँ आओगे, मेरे धाम में आओगे। तो अगर हम ये सीख जाए कि सेवा के साथ, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सेवा तो रहनी चाहिए, सेवा के साथ हम हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण में करें तो इसके द्वारा हमारा स्मरण भी बढ़ेगा। भगवान जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया जो कि उन्होंने नारद मुनि जी द्वारा स्वीकार किया था, तो क्या था वो उपदेश, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो अगर हम यशोदा माता का उदाहरण लेकर हम भी प्रयास करें तो इसके द्वारा हमारा स्मरण भी बढ़ेगा भगवान की लीलाओं का, और इसके द्वारा जैसे यशोदा माता अधिक आनंद अनुभव कर रही थी भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, उस प्रकार हम भी असली आनंद अनुभव करेंगे। आज हम ये आनंद नहीं अनुभव कर पाते, हम भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि जो भगवान के नाम का उच्चारण जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे। बेशक हम 16 माला कर रहे हो, पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक कथा सुनाते थे कि जब वो कॉलेज में थे, स्कॉटिश कॉलेज में, तो उनके एक प्रोफेसर थे जो उनको कहते थे कि हर विद्यार्थी को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ऊंचे नंबर आए फिर कम से कम अच्छे नंबर आएंगे। जैसे मान लो आपको 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो अगर आप ये सोचो कि हमें तो 40% चाहिए पास, फिर थर्ड क्लास में पास हो जाएंगे, तो शायद 40% भी नहीं मिले। पर अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं हमें तो 80% नंबर चाहिए, फिर 40-50% आने की संभावना है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये उदाहरण लेते हुए कि अगर हम ये सोचें कि हमने दिन में केवल 16 माला का जाप करना है और उसके बाद महामंत्र का उच्चारण नहीं करना, तो 16 माला भी ठीक नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका ये भाव रहेगा कि हमने सदा निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना है, तो फिर आप 16 माला का जाप अच्छी तरह कर पाओगे। तो शुक्रदेव गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि ये 16 माता जब नहीं मतने लगी तो साथ साथ भगवान की लीलाओं का गीत जिसकी रचना उन्होंने की थी उसको भी गा रहे थे। हमें गीत की रचना करने की आवश्यकता नहीं, हमारा सौभाग्य है कि महान संतों ने हमारे लिए सब गीतों की रचना कर दी है, हमें केवल उसका उच्चारण करने की आवश्यकता है। तो भगवान दूध पी रहे थे माता के स्तन का, फिर वहां सामने दूध उबल रहा था। यशोदा माता को ये चिंता रहती थी कि मेरा बेटा जो है पड़ोस के घरों में जाकर मक्खन और दही क्यों चुराता है, क्योंकि उन्हें तो बकायदा शिकायत आती थी कि आपका बेटा आता है हमारे घर में क्या करने के लिए, मक्खन चुराने के लिए और दही। तो ये यशोदा माता पूछती थी क्या तुमने कभी पकड़ा इसे चुराते हुए, और कुछ प्रमाण तो था नहीं किसी के पास क्योंकि कोई कभी पकड़ नहीं पाया। तो यशोदा माता ने उन्हें ये भी कहा तुम ऊपर क्यों नहीं छुपा देते लॉफ्ट के ऊपर। वो कहती है कहने लगे कि हम वहां भी छुपाते हैं पर अंधेरे में भी ये दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने पूछा अंधेरे में कैसे पहुंच जाते हैं, बिजली बंद रखो। कहते हैं बिजली बंद रखते हैं जब भी पहुंच जाते हैं। कैसे, उनके शरीर में जो गहने हैं उनसे इतनी रोशनी निकलती है रात के समय कि वो पहचान लेते कि हमने कहां छुपाया है दूध और मक्खन। फिर यशोदा माता ने कहा कि बोलो तो गहनों को मैं निकाल देती हूँ उनके शरीर से। पर जो गोपियां थीं वो इतनी आकर्षित थीं भगवान की लीला से, उन्होंने ये विनती की नहीं 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 मत निकालना उनके गहने मत निकालना। तो जब यशोदा माता को बार बार ये शिकायत आ रही थी कि आपका बेटा हमारे घर में आकर मक्खन और ये दही चुरा रहा है, खास करके मक्खन, तो यशोदा माता को शक हुआ कि मैं जो अपने घर में जो मक्खन बना रही हूँ वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उनको ये शक हुआ कि पड़ोस के घरों में ज्यादा अच्छा मक्खन है, ज्यादा अच्छा सुगंध वाला मक्खन है, तो शायद इसलिए मेरा बेटा वहां जाता है उनके घर के मक्खन को चखने के लिए। और कहा गया भागवत में कि उन दिनों में जो घास भी एक गाय खाती थी, सुगंध का घास खाते थे। आजकल तो घास में कोई सुगंध तो शायद है नहीं, पर जैसे आजकल अलग अलग फ्लेवर होती हैं अगरबत्ती का, कोई चंदन सैंडलवुड क्या 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 अलग परफ्यूम होते हैं अलग अलग फ्लेवर के, तो जो घास भी जो गायों को दिया जाता था उसमें अलग अलग प्रकार के सुगंध थे। और गायों गाय जो हैं जिस सुगंध का घास खाती थी उसी सुगंध का दूध निकलता था। आजकल तो सादा घास खाती हैं तो सादा दूध निकल, पूर्ण देना में जिस सुगंध का घास हो उन्हें खिलाया जाता था उसी सुगंध का दूध निकलता था। तो यशोदा माता के वो बड़े ध्यान से दूध को उबाल रही थी क्योंकि उनको चिंता रहती थी कि मेरा बेटा, उनको इनकी इच्छा ये थी कि मैं जो दही और मक्खन बनाऊंगी पड़ोस के गोपियों के घरों से ज्यादा सुगंधित होना चाहिए, तो मेरा बेटा वहां पड़ोस में नहीं जाएगा। तो जब वो उनका बेटा दूध पी रहा था तो माता ने देखा कि दूध उबल रहा है कढ़ाई में, तो गई उतारने के लिए। वो जो उनका बेटा है ये रोने लगा, नकली आंसू बहाने लगा। और फिर बेटे ने थोड़ा मक्खन चुरा कर भाग गया और वो मक्खन खिलाने लगा किसे, बंदरों को। पर बंदरों को मक्खन खिलाते खिलाते भगवान बार बार चारों तरफ देख रहे थे कि मेरी माता कब आएगी। उनको शक था कि मेरी माता भी मेरा पीछा करेगी, क्योंकि वो भागने से पहले एक मटके को उन्होंने तोड़ दिया था। जब माता उन्हें छोड़कर गई वो बोलते हुए दूध की देखभाल करने के लिए, तो मटका जो था उसे उन्हें पत्थर फेंक कर तोड़ दिया। और फिर दही को चुरा कर वो मक्खन चुरा कर ले गए और बाहर बंदरों को बांट रहे थे। तो यशोदा माता ये लीला भगवान ने प्रकट की उनका स्नेह बढ़ाने के लिए। तो यशोदा माता उनका पीछा किया एक छड़ी के साथ, लकड़ी छड़ी छड़ी के साथ, और माता उनके पीछे, उन माता ने उन्हें ढूंढ लिया, देखा कि बेटा बंदरों को मक्खन खिला रहा है। और फिर माता पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं वहां पीछे से आ रही है, क्या किया उन्होंने, दौड़ने लगे। और हालांकि यशोदा माता का वजन जब भारी था और उनके शरीर सजा हुआ था फूलों के साथ, वो उनके पीछे भागे और उन्हें पकड़ लिया। तो जब उन्हें पकड़ लिया तो माता ने लाठी दिखाई। फिर जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा डर गया है ये लाठी देकर, तो उन्होंने उस लाठी को फेंक दिया। और माता को डर था कि मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं चले जाए। कई बार बच्चे डर के डर से घर से भाग जाते हैं, क्योंकि माता ने उसे इतना डांटा था क्योंकि उनको डर लग गया था कि अभी मेरा बेटा घर नहीं छोड़कर भाग जाए। और उनको साथ में पड़ोसियों की शिकायत भी आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े इतनी शरारत कर रहे हो, तुम्हें बांध देना है मैंने। किसके साथ, रस्सी के साथ। तो पहले तो माता ने एक रस्सी ली उनको बांधने के लिए, और एक रस्सी जो है छोटी निकली, कितनी उंगलियों से, दो उंगलियों से। फिर उनके घर में जितनी रस्सियां थी उन सब को उन्होंने जोड़ लिया। घर में काफी रस्सियां थी पर उनको जोड़ जोड़ कर ये अनुभव हुआ कि हमेशा जो रस्सी थी दो उंगली छोड़ी दी। फिर इस घटना को देखकर आश्चर्य चकित हो गए थे। फिर उन्होंने पड़ोस की गोपियों के घरों में जो रस्सियां थीं, उन्हें भी मंगाया। जब भी जो रस्सियां हैं, दो उंगली छोटी निकली। तो इससे आपको क्या सबक मिलता है? इससे हम ये देखते हैं कि भगवान को अगर आपने पकड़ना हो या समझना हो, तो उनकी कृपा से ही आप उन्हें समझ सकते हो या पकड़ सकते हो। आप अगर सोचो कि अपने भौतिक बल के द्वारा आप उन्हें पकड़ सकोगे या सो, तो ये संभव नहीं है। तो यशोदा माता ने घर की रस्सियों को जोड़ दिया, पड़ोस के गोपियों के घरों की रस्सियों को मंगाकर जोड़ दिया, और इन सब रस्सियों को जोड़ने के पश्चात भी जो उनको वो बांध नहीं पाई, दो उंगली छोटी कम निकली। और ये जैसे ये प्रयास कर रही थी यशोदा माता बेटे को बांधने के लिए, एक तरफ से तो उनके शरीर से पसीना आ रहा था। आप किसी कार्य को करने का प्रयास करते तो कई बार पसीना आने लग जाता है। दूसरी तरफ से जो पड़ोस की गोपियां थीं, वो भी इस घटना को देख रही थी, वो भी देख रही थी किस प्रकार यशोदा माता प्रयास कर रही है अपने बेटे को बांधने के लिए, और वो इतनी निकम्मी है कि बांध नहीं पा रही। तो पड़ोस की गोपियां जो है वो हंसने लगी, उससे एक तरफ से सब यशोदा माता का मखौल उड़ा रही थी कि देखो ये छोटे बेटे को भी इतनी रस्सियों को जोड़कर भी बांध नहीं पा रही। और दूसरे तरफ से पसीना आ रहा था यशोदा माता, वो बेचैन थी, पर साथ में माता आनंद भी अनुभव कर रही थी इस लीला द्वारा। वो देख रही थी कि मेरा जो बेटा है कितना चलाक है, कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसे मैं इतनी रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही हूं पर बांध नहीं पा रही।
भाग्यशाली,
कितना भाग्यशाली है। तो दो उंगलियां छोटी निकली हमेशा। तो महान संतों ने ये दो उंगलियों के वर्णन करते हुए कहा है कि दो उंगलियां छोटी होने कम होने का अर्थ यह है, एक तो अगर आप भगवान को समझना चाहो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिना प्रयास परिश्रम के आप भगवान को समझ लोगे। जैसे कई बार व्यक्ति आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद हो, हमें भगवान का धाम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, पर कुछ प्रयास करने को तैयार नहीं है, है ना। उन्हें ऐसा मंत्र चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे इंद्रिय तृप्ति के लिए, और फिर भी उन्हें ये उम्मीद दे कि तुम भगवान के धाम लौट जाओगे। तो प्रयास बिना उन्हें क्या चाहिए, भगवान का धाम आ जाए। आज तो यही स्थिति है, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। जैसे रावण ने उम्मीद की थी कि सीढ़ी बना लेगा स्वर्ग तक, तो हम सोचते हैं किसी आधुनिक प्रयास के द्वारा हमें भौतिक संसार में भी सुविधा मिले, भौतिक कार्य के द्वारा भौतिक जगत में भी सुविधा मिले और भगवान के धाम में जा सके, ये संभव नहीं है। तो एक का तो महान संतों के अनुरोध के अनुसार ये अर्थ है कि आप प्रयास करोगे फिर आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये दो उंगलियों कम होने का ये अर्थ है, आप अगर प्रयास करोगे फिर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, और अगर प्रयास नहीं करोगे तो कृपा प्राप्त नहीं होगी। इस विषय में गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, क्या ये यथम प्रपन्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरे शरणागत होने का प्रयास करेगा उतनी मैं उसे बुद्धि दूंगा मुझे समझने के लिए। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हमें भगवान के धाम लौटना है, अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए, अगर आप भौतिक संसार के क्लेशों से बचना चाहते हो, तो क्या है उपाय, भगवान के शरणागत होना। भगवान के शरणागत होने का अर्थ क्या है, ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा अगर हम साधना भक्ति और अनेक विधियों का पालन करेंगे। अगर हम अनेक विधियों का पालन नहीं करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और उसका क्या अर्थ है, भौतिक संसार में जन्म लेते लो लेते जाओ, आज आप देख सकते हो भौतिक समाज की स्थिति कितनी तेजी के साथ बिगड़ रही है कि नहीं? आप सब, मैं तो उस वक्त रक्षा में था, पर पिछले हफ्ते ये जो भूकंप आया था कश्मीर में, उसका प्रभाव तो आपके दिल्ली तक पहुंचा। मैं चंडीगढ़ में था कल और परसों, और भक्त कह रहे थे चंडीगढ़ लुधियाना में हर एक का घर हिल गया था, हर एक का घर। सुना है थोड़ा प्रभाव दिल्ली तक भी आया था, पर उस चंडीगढ़ लुधियाना पंजाब हरियाणा में जितने भक्त मिले सब ने कहा हम सब घर के बाहर भाग कर आ गए थे। तो ये तो हम सोच रहे होंगे चलो ये भूकंप कश्मीर में हम तो बच गए, फिर ये भूकंप से 3 महीने पहले ही बॉम्बे में बहुत तेजी के साथ बारिश आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए, डूब गए, है कि नहीं? उसी से 3-4 महीने और पहले ये भयंकर सुनामी आई थी जिसमें भी हजारों लोग मारे गए सुनामी में, है कि नहीं? तो जब सुनामी आई तो हमने सोचा हम तो बच गए, दूसरे लोग मारे गए। फिर उसके बाद ये बॉम्बे की दुर्घटना हुई तो हमने सोचा कि हम तो बच गए, वो दूसरे मारे गए। फिर ये कश्मीर की दुर्घटना है, सुनामी से पहले आपका गुजरात का भूकंप था, उड़ीसा का साइक्लोन था, फिर न्यू ऑर्लीन्स अमेरिका में ये दुर्घटना आई कुछ महीने पहले। तो इन सब घटनाओं से आप क्या देख सकते हो, ये जो भयंकर घटनाएं हैं पहले आप इन्हें अनुभव करते थे 20 साल में एक बार, है कि नहीं? अगर आप इस भौतिक जगत की पृथ्वी का इतिहास देखो तो आप ये देखोगे कि ये जो महान दुर्घटनाएं हैं पहले बीतती थी 20 साल में एक बार, आज ये महान दुर्घटनाएं बीत रही हैं कितनी जल्दी से, 3-3, 6-6 महीने में। आप सोचो हम बच गए अभी, हमें तो हमने अभी वो एक स्टील कंपनी है वो स्टील बेचती है और कहती है अर्थक्वेक प्रूफ, तो लोग उल्लू बनकर कहते हैं हम ज्यादा दाम दे देंगे अभी ये स्टील लगाएंगे तो हमारी बिल्डिंग में भूकंप का प्रभाव नहीं आएगा। आप प्रकृति के नियम, प्रकृति जब क्रोधित होती है तो आप अपने आप को नहीं बचा सकते, चाहे आप वो अर्थक्वेक प्रूफ स्टील लो या अर्थक्वेक प्रूफ सीमेंट लो, आप अपने आप को नहीं बचा सकोगे। तो भौतिक संसार का जो क्लेश है, कष्ट है, ये केवल बढ़ते ही जा रहा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा कि भौतिक संसार में क्या कि कोई चाहता है कि भूकंप के प्रभाव में फंसे या किसी इस प्रकार दुर्घटना का प्रभाव हो उस पर, नहीं। पर 7 प्रकार के कष्टों से हम नहीं बचा सकते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या योजना बनाता है, भगवान के धाम लौटने के लिए। तो भगवान के धाम लौटने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम सब ये सौभाग्य है कि हम शुद्ध भक्ति शुद्ध संस्था के साथ जुड़े हैं, पर हमें अभी इस संदेश का लाभ उठाना चाहिए। और अगर हम लाभ उठाएंगे तो ही हम भगवान के शरणागत हो सकेंगे, तो ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो यशोदा माता ने सारी रस्सियों को जोड़ दिया, पसीना आ रहा था, जो उनका सिर सजा हुआ था फूलों के साथ, सारे फूल नीचे गिर गए। दूसरी पड़ोस की गोपियां हंस रही थी और एक साथ मंदिर यशोदा माता को आनंद भी आ रहा था अपने बेटे की अद्भुत लीला को देखकर। फिर भगवान ने मां पर दया की, भगवान ने देखा मेरी मां कितना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, तो आप मुझे बांधने दो, माता को बांधने दो। फिर जब भगवान मान गए कि माता को बांधना चाहिए, जब ही वो बांध पाए, तो इसीलिए शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रसिद्ध ऊंचे देवता हैं ये भी भगवान के वश में है, भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो अंत में भगवान ने यशोदा माता को उन्हें बांध दिया, जबकि उन्होंने देखा कि मेरी माँ कितना परिश्रम कर रही है, कितना प्रयास कर रही है, किस लिए? मुझे बांधने के लिए। उसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं वैदिक भक्ति का पालन करने के लिए, हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए, फिर भगवान आपको सफलता देंगे, फिर भगवान आपको योग्यता देंगे, जिसके द्वारा अब भगवान की असीम शक्तियों को समझ सको। वैसे तो हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरण कमलों की सेवा में जुड़ी हुई हैं, पर परम भगवान अपने भक्त के द्वारा उन अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उस घटना का वर्णन करते हैं जबकि परम भगवान अपने भक्त के क्या बन गए? सारथी बन गए। आपके विग्रह का नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी है कि नहीं? तो परम भगवान अर्जुन के आदेश के अनुसार अर्जुन के रथ को ले गए कहां? दोनों सेनाओं के बीच में। आप कभी देखते हो कोई बड़ा आदमी अपने नौकर का की सेवा करता है, तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने अपने पिता के चप्पलों को भी अपने सिर में उठाकर जाते हैं। तो परम भगवान जो है केवल भक्ति द्वारा आप उन्हें वश में ला सकते हो। परम भक्ति इस भावना से नहीं कर रहे कि हम भगवान को वश में लाएं, हम इस भावना से भक्ति नहीं कर रहे कि क्या भगवान को कहेंगे हमारी मारुति गाड़ी चलाकर हमें ले जाओ, हमारे हमें रथ में वहां ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं हमारे अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, और माध्यम है महामंत्र का उच्चारण। तो यशोदा माता अंत में अपने प्रयास परिश्रम से अपने बेटे को बांध पाए, और ये जो दिव्य लीला है इसे हम कौन सी लीला बुलाते हैं? दामोदर लीला। और दामोदर अष्टक की प्रार्थना में हम इस लीला का गुणगान कर रहे हैं, और इस लीला का वर्णन भागवतम के 10वें संत के 9वें अध्याय में। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, पूरा 10वां स्कंद भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है, और हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए क्या? इन लीलाओं का स्मरण करने के लिए। और आप संभव ये इस कार्य में संभव हो पाओगे, सफल हो पाओगे, अगर आप महामंत्र का निरंतर उच्चारण करो। तो जैसे हमने कहा था आरंभ में, हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक के महीने में रोज इस दामोदर अष्टक का प्रार्थना की प्रार्थना करेगा, उसके हृदय में दामोदर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो इस लीला का स्मरण कीजिए और दूसरी लीला का भी स्मरण कीजिए भक्ति में आगे बढ़ने के। हरे कृष्ण।